अभिषेक देखने के उपरांत रानी चारे रानियां कौशल्या सुमित्रा कैकेयी और सुप्रभा अपने महल जाने के लिए विचार में तत्काल रथ खड़ा है और रथ में बैठ करके महल के लिए चल देती हैं। घर जाकर पहुंचती है, ध्यान आता है कि हमने गंधोदक नहीं लिया और हम तत्काल चले आए। तत्काल एक खोजे के लिए, खोजा माने बूढ़ा वृद्ध आदमी, उससे कहा कि जाओ हमारे लिए चारों के लिए गंधोदक लेकर आओ। वह जाता है और जाकर महाराजा से कहता है कि रानियों ने गंधोदक नहीं ले पाया और रथ खड़ा देखा तो जल्दी जल्दी में महल में पहुंच गई। महाराज दशरथ ने तीन लाशियों के लिए जो कि रानी कौशल्या की और सुमित्रा की और कैकेयी की दासी खड़ी थी उनके लिए गंधोदक की कटोरियां पकड़वा दी और कहा जाओ गंधोदक लेकर जाओ। अब सुमित्रा की वहां पर, सुप्रभा की वहां पर दासी नहीं दिखी तो वही खोजा जो खबर लेकर आया था उसी खोजे के लिए वृद्ध आदमी के लिए कटोरी गंधोदक की दे दी और कहा जाओ तुम सुप्रभा को दे देना गंधोदक। वह गंधोदक लेकर जाती है, वे दासियां तो नौजवान थी और जल्दी से जाकर रानियों को गंधोदक दे देती है। ना रानियां अपने मस्तक पर गंधोदक ले लेती हैं और सुप्रभा के लिए गंधोदक नहीं पहुंचा। सुप्रभा मन में विचार करती है कि देखो तीन रानियों पर महाराजा का अत्यंत स्नेह था, इनके लिए तो गंधोदक भेज दिया। आज मैंने बात परख पाई, मेरे ऊपर महाराजा का स्नेह नहीं है। जब पति का स्नेह नहीं है और पति भी हमारा निरादर करते हैं और यहां पर तीनों रानियों ने गंधोदक लिया है, मैंने में सबने देखा है और मेरे लिए गंधोदक नहीं मिला, मेरा अपमान हुआ है। आज भगवान का गंधोदक नहीं भेजा हमारे लिए, फिर और तो बात दूसरी हो ही कैसे सकती है। ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। रानी अत्यंत खेल खिन्न होने लगती है और रानी भोजन के लिए नहीं जाती है और गंधोदक की न मिलने से अत्यंत दुखी होकर के रानी लेट जाती है। फिर उठ करके द्वारपाल से कहती है, हे द्वारपाल मेरे लिए विष ला दे, औषधि के लिए चाहिए है। वह द्वारपाल विष लेने चला जाता है। इतने में राजा दशरथ महल में पहुंच जाती है। तीनों रानियों के लिए तो देख लेते हैं पर सुप्रभा नहीं दिख रही। सुप्रभा क्यों नहीं दिख रही, कहां गई? दासी ने कहा उनका मन उदास है, वे लेट गई। अरे क्या बात है, राजा रानी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि रानी तुम्हारा मन उदास क्यों है, उठो भोजन के लिए तुम क्यों नहीं पहुंची? रानी उठकर तत्काल नमस्कार करती है, कहती है नाथ अब आपका ही हमारे ऊपर जब निरादर है, आपके मिट्टी में गिरी हुई हूं, अब मेरे लिए भोजन की कहां इच्छा। इस प्रकार चर्चा कर रही थी, इतने में वह द्वारपाल वह बिस्की पुड़िया लेकर आ जाता है, कहता है लीजिए महारानी, यह विष आपने मंगवाया था। राजा दशरथ ने तत्काल हाथ बढ़ाया और अपने हाथ में ले लिया, कहा ये विष किस लिए मंगाया। कहती है रानी हे महाराज, मेरे लिए जब आज भगवान का गंधोदक नहीं मिला तो मैंने अपने मन में संकल्प किया कि जब भगवान का इतना ऊंचा गंधोदक जो सिर पर लगाने के लिए आज नहीं मिला तो और वस्तु कहां प्राप्त हो सकती है, और मेरा अपमान ही अपमान होता रहेगा, मैं इस महल में सबसे गिरी हुई अपने मन में सोच रही हूं, इसलिए मैंने सोचा कि जब आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है तो आज मैं विष खा करके प्राण त्यागूं। राजा कहते अरे मुग्धे, इन तीन के लिए तो मैंने दासियों के हाथ गंधोदक भेजा है, तेरे लिए तो है वृद्ध खोजा जो यहां से खबर लेकर गया था उसी के हाथ भेजा है, और इतने में वो खोजा गंधोदक लेकर पहुंच जाता। राजा लेकर के अपने हाथ से और रानी सुप्रभा के मस्तक पर गंधोदक लगा देते हैं, रानी चरणों का स्पर्श कर लेती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसी यह गंधोदक की महिमा है। अब खोजा के लिए डांटते हैं, तुमने इतना विलंब क्यों लगाया, इतने विलंब में नहीं आने क्या हो जाता, मैं आ गया महलों में। खोजा कहने लगा हे महाराज, जब मैं नौजवान था, जब मेरी शक्ति थी हथियार बांधने की और घोड़ों पर सवार होने की, तब मेरे लिए आप आगे बढ़ाते थे सेना के संग में, और आज आप मेरी इस वृद्ध अवस्था को देखकर और आप मेरे लिए डांट रहे हैं। महाराज मैं क्या करूं, मेरे पैर थक चुके हैं, मेरा शरीर काम नहीं देता है, यह गंधोदक आपने दिया है, सो गंधोदक लेकर मैं आया हूं कि रानी को गंधोदक दूंगा और फिर मैं अपने मस्तक पर चढ़ा लूंगा, और काम आप बदलाते तो मेरी शक्ति नहीं थी, यह गंधोदक ऐसा है। इसलिए भाइयों आज भगवान की पूजा हुई, अपन ने अभिषेक देखा और गंधोदक लिया उत्साह से, और जिसके घर गंधोदक न पहुंचा हो वे उस प्रभा रानी घाई न करियो, गंधोदक मंगा लियो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी, बोलिए भगवान महावीर स्वामी।
आइए हम सब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करें। मैं उपस्थित
राग विज्ञान नमो ताई जाति भई हर गृहन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करते आ रहे हैं। हमने उन विचारों को अपने व्यवहार में लाने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की है। हम असल में चाहते ये हैं कि जैसे भी बने इस जीवन में हम अपने जीवन को अच्छे बनाने की प्रक्रिया समझ सकें और शुरू कर सकें, क्योंकि ये एक जीवन हमें अपने कल्याण की प्रक्रिया समझने और कल्याण करने के लिए ही मिला है। हम चाहें तो जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जो पूज्य पुरुष हैं, उनके अनुरूप अपने आचरण को बनाएं, उनके अनुरूप अपनी दृष्टि को बनाएं, तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। अनुसरण या अनुकरण करना यह एक प्रक्रिया भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की है। हम अपने जीवन में बुराइयों का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बन पाता, हमारा जीवन पतन की तरफ चला जाता है। और यदि हम अच्छाइयों का और अच्छे लोगों का अनुसरण करते हैं, उनका ही अनुकरण करते हैं, तो हमारा जीवन अवश्य अच्छा बनेगा, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। और इसलिए हमारे जो पूज्य पुरुष हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनके जैसे बनने के लिए इनका हम अनुसरण कर रहे हैं। उस अनुसरण की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अरहंत और सिद्ध बनने के लिए जरूरी है कि उनके गुणों की आराधना करें, वो हम समय समय पर आराधना करते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु के गुणों की आराधना के साथ साथ हम उनके जैसे आचरण को भी अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। हम उनके आचरण से अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं। एक सदगृहस्थ को निरंतर अरहंत और सिद्ध भगवान के जैसे बनने की भावना रखनी चाहिए और अनुसरण करना चाहिए आचार्य उपाध्याय और साधु जनों का। अनुव्रतों का पालन करने वाला महाव्रतों का अनुसरण करे। और इसलिए हमने पिछले दिनों इन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु पांचों परमेष्ठियों का अनुसरण करने के लिए, उनके जैसे बनने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी। पूर्ण रूप से समता भाव धारण करने वाले अरहंत और सिद्ध भगवान हैं। उस समता का अभ्यास करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु जन हैं, हम समता भाव की भावना भाने वाले कम से कम अपने जीवन में सुबह दोपहर शाम बैठ करके समता की भावना तो भाए। ये हमने पिछले दिनों प्रक्रिया शुरू की है। इतना ही नहीं, हमारा मन तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारा दिन हमारा उसी समता की भावना में बीते, तो उसके लिए भी आचार्य भगवंतों ने उपाय रखा है कि हम चाहें तो जैसे मुनिजन दिन भर समता का अभ्यास करते हैं, एक निश्चित समय पर तो करते ही हैं आवश्यक के रूप में, लेकिन अपने मूल गुणों के रूप में वे, अपने चारित्र के रूप में वे निरंतर समता का ही अभ्यास करते हैं। एक सदगृहस्थ ऐसा ही महीने में कोई दिन निकाले जिसमें वो सारे दिन समता की साधना कर सके, तो वे दिन एक महीने में चार हैं, जो पर्व के दिन कहलाते हैं, दो अष्टमी हैं, दो चतुर्दशी हैं। हमारे भारत में इन्हीं दिनों को पर्व माना गया है। यही दिन सांसारिक कार्यों से छुट्टी के दिन हैं। ये तो विदेशी सभ्यता का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है कि हमने रविवार को छुट्टी का दिन मान लिया। वह तो संडे है जिस दिन वहां विदेश में और थोड़ी बहुत धूप निकलती थी, उस दिन को उनमें संडे रोशनी वाला दिन धूप का दिन है, इसलिए वो हॉलीडे है। उनके यहां धूप बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती, जहां पर उन्होंने ये संडे, अपन ने भी जो है यहां पर संडे। चार दिन महीने में चार रविवार आते हैं, ये हमारे हॉलीडे नहीं है, ये हमारे पवित्र दिन नहीं है। हमारे पवित्र दिन तो दो अष्टमी और दो चतुर्दशी है, वे हैं हमारे हॉलीडे पवित्र दिन, जिनमें हम राग द्वेष के सांसारिक प्रपंच से बच करके और दिन भर अपने पूज्य पुरुषों की आराधना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अभ्यास और भावना भाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इन पर्व के दिनों में और तीन बातों का त्याग करने के लिए लिखा, आहार का त्याग करना, पांचों इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग करना और कषायों का त्याग करना, और इनके ही त्याग का नाम उपवास, यानी अपने निकट रहना, अपने स्वभाव के समीप रहना। इसे अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में एक शिक्षा व्रत कहा है। प्रोषद उपवास यानी पर्व के दिन किए जाने वाला उपवास। सामान्य रूप से उपवास के मायने हैं चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, लेकिन इतना ही नहीं है, चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ पांच इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग करना और चारों कषायों का त्याग करना और अपने आत्मा के निकट रहना, सांसारिक प्रपंच में न पड़ना, ये वास्तव में उपवास है। वो हमें सिखाता है कि कैसे हम इन सांसारिक प्रपंचों से बच करके और पूरे दिन इस बात का स्वाद ले सकें जो स्वाद हमारे पूज्य पुरुष मोक्ष मार्ग पर चलते हुए और प्राप्त करते हैं, जो अनुभूति उन्हें होती है पवित्रता की, वो हम इन दिनों में अनुभूति कर सकें। इसके लिए ये प्रोषद उपवास रखा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो वे थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें कहते हैं कि पर्व के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक अपने मन को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर पर्व के दिन तो उपवास करें ही, लेकिन उसके आगे पीछे वाले दिन में एक एक बार भोजन करें तो सकृत भुक्ति यानी प्रोषद और चार प्रकार के आहार का त्याग यानी उपवास, प्रोषदेन सह उपवासा प्रोषदो उपवासा, जिस उपवास के आगे पीछे एक बार भोजन किया जावे वो प्रोषदो उपवास है। ऐसी प्रक्रिया हमें और अधिक समता भाव रखने के लिए और सहायक बनती है, वरना कई बार हमारा मन कमजोर हो जाता है तो हम चूंकि कल उपवास करना है इसलिए आज जम के दोनों टाइम में तीन टाइम, क्योंकि कल का उपवास, और फिर उपवास के दूसरे दिन सुबह से ही तैयारी शुरू, कभी दर्शन हो गए और कभी भोजन शुरू हो जाए, तो शायद इसलिए हमारी उस आकुलता को समझते थे आचार्य भगवंत, हमें उस आकुलता से बचाने के लिए उन्होंने पहले से ही हमें इशारा कर दिया कि ऐसा उपवास करना जिसके आगे पीछे भी और बड़े परिणाम निर्मल रहे, जिससे कि हमारे अंदर आकुलता का भाव ना आ सके। ऐसी प्रक्रिया और करना क्या, फिर आहार नहीं किया, पांच इंद्री मन के विषयों से दूर रहे, कषायें भी मंद हुई, अब करना क्या, धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वा अन्यान वा, सो नहीं जाना, अब उपवास से इसलिए फुर्सत है, अब आराम से सो या कि टेलीविजन देखो, क्योंकि नहीं उपवास है तो अब कुछ तो पान करना पड़ेगा, भोजन पान छोड़ा है तो कुछ तो पान करेंगे, भोजन तो कुछ तो करेंगे, कहते क्या करना, धर्मामृतम सतृष्णा, बड़ी लालसा के साथ बड़ी रुचि के साथ धर्मामृत का पान करेंगे, और अकेले अकेले नहीं, अन्यान्वा जो साधर्मी जन है उनको भी धर्मामृत का पान कराएंगे, नहीं अब तो उपवास से आज आज कचूने करो, एक कोने में बैठ के झपकी ले माला फेरो, हाँ नहीं ऐसा नहीं लिखा उसमें, अब महाराज आप उपवास से मेहनत में करो, सांसारिक कार्यों में तो कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, कितनी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, राग द्वेष करने में ज्यादा मेहनत है भैया, वीतरागता में कोई मेहनत नहीं है, जहां राग द्वेष से बच गए वहां कहीं कोई थकान नहीं है, थकान तो राग द्वेष से आती है, सो देखो तो हम संसारी जीव राग द्वेष करते हुए नहीं थकते हैं, और धर्म ध्यान में करते हुए हमें लगता है कि अब रहन दो अब थक जाए, नहीं कभी भी वीतरागता के तरफ जाने वाले जो भी साधन है उनको अपनाते समय ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि इसमें तो हम थक जाएंगे, राग द्वेष करने में थकान आनी चाहिए कि कहां तक करते रहेंगे यही राग द्वेष यही प्रपंच संसार का, ऐसा भाव हमारा बना रहे तब जाकर के जीवन अच्छा बनता है। ये प्रोषद उपवास नाम का शिक्षा व्रत है, और इसके बाद आता है अब सेवा का भाव, क्या करें, जितना हमसे बनता है उतना तो हमने कर लिया, अब कुछ आसान सा तरीका और बताओ जिससे कि हम अच्छे बन सकें, तो कहते अच्छे लोगों की सेवा करो, चलो तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग मिलेगा। सेवा के अलग अलग ढंग हैं, अनंत और सिद्ध भगवान की सेवा अलग ढंग से होती है, आचार्य उपाध्याय और साधु की सेवा करने का अलग ढंग है, हम पहले ये समझ लें कि सेवा का कॉन्सेप्ट क्या है, सेवा के मायने क्या है। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा कि व्यापत्ति व्यपनोदा पदयोग संवाहनम चगुण रागात बैया वृत्यम शिक्षा व्रतानी चत्वारी शिष्ठानी, जब हम आज आचार्य उपाध्याय और साधु जन जो कि मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, संसार के प्रपंच से बच करके वे अपने सच्चे रास्ते पर जीवन को अच्छा बनाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर पुराने किए हुए कर्म तो पड़े हुए हैं। उन कर्मों के उदय में और बाहरी वातावरण की विपरीतता हो जाने पर कोई अगर बाधा उत्पन्न हो जावे तो उस बाधा से उन्हें दूर करना या उस बाधा को ही दूर करना, यही सेवा है। ऐसी सेवा आचार्य उपाध्याय और साधु की जाती है, और इतना ही नहीं, अरंतुर सिद्ध भगवान की सेवा कैसे करें, उन पर तो कोई विपत्ति आने वाली नहीं है। ना वे चलते हैं कि हम अगर वे चल के आए हैं तो उनके पैर दबा देवे, ना वे आहार इत्यादि कोई हमसे ग्रहण करते हैं, दान भी नहीं लेते, क्या करें फिर, उनकी सेवा कैसे करें। महापुरुषों की सेवा का एक ढंग और है कि उनके जैसे बनने की भावना भाना सोई उनकी सेवा है। भैया हमारे और कछु उपकार न करो, हमने जो कछु कही जैसे बनने की कही से ऊंचे बन जाओ, जो ही हमारा उपकार है, हमारे ऊपर आपका बहुत उपकार है। भगवान अपन से कह रहे कि हमारे ऊपर उपकार करना हो तो अपने ही ऊपर उपकार कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो, सो वो तो हमारे ऊपर उपकार हो। तो आज अपन ने भगवान के ऊपर उपकार नहीं किया, अपने ऊपर उपकार किया कि भगवान की पूजा करिए। भगवान की पूजा करना ही भगवान की सेवा है, क्योंकि पूजा के मायने हैं स्तुति, प्रार्थना, भक्ति, ये सब पूजा में शामिल है। और उसके मायने हैं कि महापुरुषों के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति, अल्प गुणों को भी बढ़ा चढ़ा करके कहने का नाम स्तुति है। और आनंदाते गुणा वक्तु मसक्यास्त्वयि कथम सा कथम, और आप तो हैं भगवान अनंत गुण के धारी, हम बढ़ा चढ़ा के क्या कहें, जितते हैं उतने ही नहीं कह पाएंगे। ऐसी ये पूजा है जिसमें हम भगवान के गुणगान करते हैं, और उन गुणगान करते समय विचार करते हैं कि वही गुण मेरे भीतर भी है और उन गुणों को मुझे प्रकट करना चाहिए, भगवान मुझे यही तो कह रहे हैं। तो अरंत और सिद्ध भगवान के गुणगान करना उनकी सेवा है, वो सेवा हमें उनके जैसे बनने में मदद करती है, और आचार्य उपाध्याय और साधु जनों के ऊपर आने वाली कोई विपत्ति है उसको दूर करें, या कि उनके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने। मान लो विपत्ति कोई नहीं है उनके कर्म के उदय में, पुण्य का उदय है, आसानी से मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या करें, उनके मोक्ष मार्ग में चलने में सहयोगी बने। उनके मोक्ष मार्ग में जो जो साधन है उन सब साधनों को हम जुटाएं, कुछ ना कर पाए तो कम से कम उनके धर्म साधन में अनुकूल वातावरण तो बना देवे। कहते कि धर्म साधन में अपने पूज्य पुरुषों के अनुकूल वातावरण निर्मित कर देना, यह भी उनकी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। हो सकता है आप पैर दबाने ना आ पाए हो सकता है आहार दान के लिए हमें अवसर ना मिल पाया हो, तो क्या करें, महाराज को जिसमें अनुकूलता है उनका धर्म ध्यान अच्छे से चले, हमें तो उसमें ही आनंद है, ऐसा भाव भालिया हो गई सेवा। ये सेवा करने के हमारे यहाँ पर ढंग है। हम स्वपर कल्याण की भावना से सेवा करते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, इसलिए वह दान भी सेवा का ही एक अंग है। आचार्य समंत भद्र स्वामी तो दानम वैया वृत्यम, धर्माय तपोधराय गुण निधे, जो धर्मात्मा है उनसे धर्म की प्राप्ति के लिए, उन गुणवानों के लिए हम जो सेवा इत्यादि करते हैं वही दान भी है। इतनी सारी चीजें इस वैया वृत्ति में समाई है। अपन एक एक करके इन सब का विचार करेंगे। दान की पद्धति और पूजा की पद्धति, ये दोनों पद्धतियां भी सेवा का ही एक अंग है, इन पर अलग विचार करेंगे। सेवा का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी अपन विचार करेंगे। पर इतनी सी बात आज अपन अपने पास रख करके और जाएंगे कि हमें सेवा किनकी करना है जो गुणवान है, ताकि हम भी उनकी सेवा करके गुणवान बन सकें। हम जब भी सेवा करें तो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए करें, अपने संसार को बढ़ाने के लिए नहीं करें। उनके जैसे गुण मेरे भीतर आवे, मेरा जीवन भी उनके जैसा बने, इस भावना के साथ करें। यही स्वपर कल्याण है, यही अपना और दूसरे का अनुग्रह है, उपकार है, तभी हम वास्तव में अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और बात पूरी हो जाएगी। मेरे पास 10 बजे के हिसाब से 6 मिनट बचे हैं, वो 2-3 मिनट में हो जाएगा। वो जो 3 मिनट बच गए, वो एक आध दिन जो अपने मंत्री के हाथ में दे देते कि ये ले लो फल रख दो, या जैसा भी करना हो वैसा कर। अब दिया है उन्होंने तो ले लेना चाहिए, जो जिस तरह से जिसके पास जो है वो देता है, स्वीकार कर लिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये प्रक्रिया राजा को ध्यान में आया कि कितने दिन हो गए, रोज बाबा जी हमें फल देके जाते हैं। तो मंत्री से पूछा कि रोज ही दे जाते हैं, कितने दिन हो गए? बोले महाराज 6 महीने से ये क्रम जारी है। तो बात क्या है, रोज एक फल दे करके जाने के पीछे ये हमें क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे प्रति अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, और क्या कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? उन फलों को तुमने अलग कर दिया या रख रखा है? महाराज मैंने सब फल रख रखे हैं, मैं जानता था कि बाबा जी अगर फल दे रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, इसलिए मैंने फेंके नहीं, किसी को दिए नहीं, रख लिए हैं। अरे तो अब तक तो 6 महीने में भी फल सड़ गए होंगे। बोले ये तो नहीं कह सकता मैं, मैंने कमरे में सब रखते गया हूं, चलें देखें। तो जाकर के देखा तो वहां पर फल तो जरूर खराब होने लगे थे, लेकिन फल जो है फट जाने से उनके भीतर हर एक में कोई ना कोई एक चमकदार सी चीज दिखाई पड़ रही थी। निकाली तो हर एक में एक ना एक नग था, हीरा था, या कोई जवाहरात था। हर फल के भीतर से एक एक हीरा जवाहरात निकला। अब राजा अपने दरबार में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जी आए। बाबा जी जैसे ही आए उनने फिर फल दिया। तो अब आज रोज तो ऐसे ही फॉर्मल होकर के ले लेते थे औपचारिकता में, आज तो उठ करके खड़े हुए, हाथ में फल लिया, पैर छुए, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं ये फल दे करके? राजा ने ऐसा पूछा तो बाबा जी बोले कि संदेश तो जो देना चाहता हूं वो तुम्हें शायद मिल गया है, तुम्हारे व्यवहार से मालूम पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ ये फल दे करके ये कहना चाह रहा था कि फल या तो खाने के काम आएगा या कि सड़ जाएगा, लेकिन उस फल के भीतर जो है वो बहुत कीमती है। हां, ये हमारे पूर्व संचित कर्मों का फल है मनुष्य की देह, इसका सदुपयोग कर ले तो काम आ जाएगी, वरना धरी धरी सड़ जाएगी विषय कषाय में। इसके भीतर हीरे जैसा आत्मा है, उसकी तरफ जरूर विचार करना। मैं तो ये धुएं रोज, बताओ एक छोटा सा फल भी दान में दिया, लेकिन कितना बड़ा संदेश दे दिया। हमारे यहां तो सेवा की भावना ऐसी ही है कि हम किसी का कुछ उपकार करते हैं तो उसके पीछे क्या छिपा हुआ है कि हम अब सब अपना कल्याण कर सकें। तो हम सेवा भी ऐसी करें जिससे स्वपर कल्याण हो, इसी भावना के साथ कि हम सब इस सब बातों से अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह मगन स्वरूप तुम्हारा है।
हमारे मन में समता का भाव आता ही है, वो लगातार बना रहे, इस अभ्यास को रोज रोज करें, जिससे हमारी क्षमता बढ़े। जितनी हमारी क्षमता बढ़ती चली जाती है, उतना हमारे भीतर धैर्य, सहनशीलता, सहिष्णुता, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव, ये सब चीजें बढ़ती हैं। हमारा क्रोध, हमारी कषायें, वो धीरे धीरे अपने आप शांत होती चली जाती हैं। यह अभ्यास, इसका नाम ही सामायिक है, जिस पर कि हम पिछले दिनों से लगातार विचार कर रहे हैं। कुछ बातें और सामायिक के बारे में हमें समझ लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान और सामायिक, इन दोनों प्रक्रियाओं को श्रावक के लिए थोड़ा सा अलग ढंग से व्याख्यायित किया गया है। श्रावक के जीवन में ध्यान करने का अपना ढंग वो सामायिक के रूप में ही है। वास्तव में जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वह तो व्रत और उसमें भी विशेष रूप से महाव्रतों को धारण करने वाले के ही संभव होता है। एक गृहस्थ तो अधिकांश समय अपना आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान में ही व्यतीत करता है। जीवन में हमारे अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने पर हम विचार करते हैं कि ये कभी हमसे अलग ना हो जाएं, या कि हमारे विपरीत कोई स्थिति निर्मित होती है तो कब इससे मैं बचूं। शरीर में व्याधि हो जाने पर हम चिंतित बने रहते हैं कि कब दूर होगी। वर्तमान के भौतिक सुखों के बारे में निश्चिंतता नहीं आ पाती, क्योंकि आगामी भौतिक सुखों की चिंता हमें चलती रहती है। गृहस्थी में इस तरह का चिंतन लगातार चलता रहता है। इतना ही नहीं, घर गृहस्थी में देखते हैं अपन कि हमारे अपने जीवन में, जो गृहस्थ जीवन में अनुभव करते हैं कि दूसरे के दुख में भी कई बार हम हर्षित हो जाते हैं, दूसरे से झूठा व्यवहार करके, झूठ बोल के भी आनंदित हो जाते हैं, चोरी करके भी हम कभी कभी आनंद मान लेते हैं, परिग्रह के ज्यादा संचित हो जाने पर भी हम आनंदित हो जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, ये हमारी अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, ये हमें पतन की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति है। ऐसा चिंतन जिसमें कि दूसरे को पीड़ा हो, झूठ बोलकर के हम आनंदित हो, दूसरे के दुख में हम सुख महसूस करें, ऐसा चिंतन, या दूसरे को कैसे मैं दुख पहुंचाऊं, इस तरह का चिंतन, मैं कैसे झूठ बोलूं, या कि मैं कैसे चोरी करूं, कैसे परिग्रह ज्यादा से ज्यादा संचित करूं, क्योंकि मैं उस सब में आनंद मान रहा हूं, इसलिए इन सब प्रक्रियाओं में अपने मन को एंगेज करके रखना, ये भी तो ध्यान ही है, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। एक गृहस्थ के जीवन में चिंता और चिंता रूप जो रौद्र ध्यान है, और इस तरह का भौतिक सुखों में आनंद रूप जो रौद्र ध्यान है, वो निरंतर चलता रहता। उससे बचाने के लिए, धर्म ध्यान में लगाने के लिए एक ही प्रक्रिया दी है आचार्य भगवंतों ने, कि थोड़ी देर सुबह दोपहर शाम पांच पापों से मुक्त होकर के तमाम विषमताओं के बीच में भी और समता भाव रखने का अभ्यास करना, इतना ही धर्म ध्यान पर्याप्त है। अपने किए गए दोषों का स्मरण करके उनके लिए आगे नहीं करूंगा, इस तरह का भाव रखना और जो बेहतर हो सके उसको करने के लिए विचार करना, यही ध्यान पर्याप्त है। हम सोचते हैं कि अल्टी पल्टी मार के आंख मीच करके बैठ जाने का नाम ध्यान है, नहीं, इतना ही नहीं है। हम 24 घंटे अच्छे परिणाम रख करके अपने ध्यान को धर्म ध्यान बना सकते हैं। ध्यान तो सब करते हैं भैया, भोजन बनाने वाली माँ भी इस बात का ध्यान रखती है कि रोटी की जगह हाथ आग में ना चला जाए, रास्ते से चल करके यहाँ आने वाला भी ध्यान रखता है कि किसी अपवित्र वस्तु पर पैर ना पड़ जाए, गड्ढे में पैर ना पड़ जाए, किसी कांटे और कील पर पैर ना पड़ जाए, इतना ध्यान तो उसे भी रहता है। हर काम हम ध्यान पूर्वक करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के भाव हमारे अंदर निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा ध्यान तो हम 24 घंटे करते हैं, उस ध्यान को हम कैसे एक दिशा दे सकें, यह सामायिक के दौरान अभ्यास किया जाता है। अशुभ मन वचन काय की क्रिया से निवृत्त होकर के जब हम शुभ मन वचन काय की क्रिया का अभ्यास करते हैं, वही ध्यान की प्रक्रिया है। सो सामायिक में हम सिर्फ उसका अभ्यास करते हैं, बाकी 24 घंटे उस अभ्यास का प्रतिफल हमारे जीवन में झलकना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 10 मिनट को कोई प्रक्रिया दोहरा ली, उसके बाद उस प्रक्रिया के रिजल्ट्स हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आए। नहीं, वो अभ्यास निरंतर होगा सामायिक का, तब हमारे अपने शेष जो 23 घंटे हैं उन सबको भी एक ठीक दिशा मिलेगी। हो सकता है कि फिर हम 24 घंटे भी दुकान पर बैठे हों, चाहे बाजार में खड़े हों, चाहे धर्मसभा में हों और चाहे अपने घर में हों, हम हर स्थिति में अपने परिणाम संभाल करके निरंतर धर्म ध्यान कर सकते हैं। खाते पीते आते जाते सब अवस्थाओं में, सोते जागते भी कोई चाहे तो धर्म ध्यान कर सकता है। अकेले एक स्थान पर बैठ करके जो हम सामायिक की प्रक्रिया करते हैं वो इतनी अधिक सामर्थ्यवान हमें बनाती है कि फिर हम हर परिस्थिति में भी समता भाव रख लेते हैं। और वो समता भाव हमारे बने रहे, अहंकार और संकेश से राग द्वेष से हम बच जावें भैया, वही ध्यान है। जितने क्षण हमारे राग द्वेष से बचने के हैं, जितने क्षण समता के हैं, वे सब सामायिक के क्षण हैं। वो सिर्फ एक जगह बैठ करके ही संपन्न हो ऐसा नहीं, रास्ते चलते भी अगर मेरी सबके प्रति समता है तो वो मेरा धर्म ध्यान चल रहा है। और चाहे हम धर्म सभा में बैठे हैं और वहां भी हो सकता है कि हम समता भाव न रख सकें, तो वहां भी हम धर्म ध्यान नहीं कर रहे होते, वहां भी हम आर्त ध्यान में ही लीन हो जाते हैं या कि रौद्र ध्यान चलता रहता। इसलिए ये जो हम सामायिक की प्रक्रिया का अभ्यास कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमारे जीवन में ये आना चाहिए कि फिर हमारी चेतना इतनी परिष्कृत हो जाए, हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ जावे, हमारे व्यवहार में सहजता आ जाए। इन तीन बातों पर विचार कर लेते हैं आज अपन, कि एकाग्रता सामायिक के समय इतनी बढ़ जाए कि फिर वो चीज हमारे ध्यान से और अलग हो ही ना पाए, फिर निरंतर उस चीज का ध्यान बना रहे। जैसे कि किसी चीज की अपन को लगन लग जाती है तो फिर अपन कुछ भी करते रहें वो चीज अपने स्मरण में बनी रहती कि नहीं, अभी भैया और तो सब ठीक है, वो काम करना है, सब काम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ क्या ध्यान में है कि वो काम करना है। ठीक ऐसे ही अगर हम सामायिक में अपने उस वीतराग भाव का अभ्यास करें, राग द्वेष के बीच समता का अभ्यास कर ले तो संसार के कामों के बीच में भी और आसानी से हम उस समता भाव को बनाए रख सकते हैं। ये एकाग्रता हमारी बननी चाहिए। अभी तो हम पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप भी दे लेते हैं, पर इन सब चीजों में हमारी एकाग्रता इतनी नहीं बन पाती कि वो हमारे शेष जीवन को भी रेगुलेट कर सके, वो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करे। अभी उतने क्षण तो हमारे सार्थक हो जाते हैं जितने क्षण हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं या कि और धर्म ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, वो क्षण तो हमारे सार्थक हो जाते हैं, लेकिन वे क्षण हमारे इतने प्रबल नहीं हो पाते कि बाकी 23 घंटे भी वे हमारे सार्थक कर सकें, वो एक घंटा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। ऐसी एकाग्रता के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे भीतर वो अंदर तक उसका गहरा प्रभाव पड़े। अगर उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है तो प्रभाव गहरा पड़ता है। अपन कभी अलग से एक प्रयोग और करेंगे वो 10-12 दिन का, उसमें ये देखेंगे कि इस कंसंट्रेशन को बनाने की प्रक्रिया क्या है। अभी तो सिर्फ ये देखें कि कंसंट्रेशन बन जाने पर हम किस तरह उससे लाभ ले सकते हैं, वो एकाग्रता हमें कितना लाभान्वित करती है। टॉल्स्टॉय ने अपना एक नॉवल लिखा, नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, दार्शनिक भी थे, विदेशी राइटर है वो, लेकिन शाकाहारी थे। मैं उदाहरण सोच समझ के देता हूं, नहीं तो बाद में आप कहें कि इनको कहां से ले आए। हाँ, और दूसरे नहीं मिलते क्या आपको? मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसको विरासत में ये सब चीजें मिली हैं वो तो इनका निर्वाह कर ही लेता है। जिसको ऐसे थॉट्स विरासत में नहीं मिले वो भी इनको अगर फॉलो करता है तो उसमें ज्यादा शाबाशी है। हमें जो चीज अपने कुल परंपरा से मिली है उसका हम निर्वाह करें तो कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि उसे हमें हम जब इजाफा करें उसे हम बढ़ाएं तो प्रशंसा होगी। हमारे घर परिवार में कोई अनुव्रत धारण करने वाला हो और हम अनुव्रत धारण कर ले इतने में हमारी कोई शाबाशी नहीं है, हम महाव्रत धारण करें तो माना जाएगा कि हाँ अपने कुल की परंपरा को हमने और आगे बढ़ाया। और जहां अनुव्रत धारण करने की रत्नत्रय की परंपरा ही ना हो और वहां कोई व्यक्ति अगर उस रत्नत्रय की आराधना के लिए उत्सुक हो तो बताइएगा कि वो महत्वपूर्ण होगा कि नहीं। उन्होंने अपने जीवन में एक संस्मरण लिखा कि जब वे कोई नाटक का प्लान कर रहे थे लिखने का तो इतने अधिक एकाग्र हो जाते थे अपने पात्रों के साथ कि वे भूल जाते थे कि मैं कौन हूं। इतनी एकाग्रता, जैसे कि हमारी भी एकाग्रता है, हम भूल गए कि हम कौन हैं। हम तो अपने को मनुष्य, और मनुष्य में भी मैं इनका पिता या कि मैं इनकी मां या कि मैं इनका ये या कि मैं एक लेमैन या कि मैं एक ऑफिसर, ये याद रहता है अपने को। मेरा अपना स्वरूप नहीं, इतनी एकाग्रता हो गई शरीर के साथ में अपनी, उस एकाग्रता को तोड़ने की एकाग्रता बहुत कठिन है। अपने आत्मस्वरूप में इतनी एकाग्रता हो जावे कि अभी अभी तक मैंने जिसमें जो मेरा स्वरूप नहीं है उसमें अपनी एक नेकता मान रखी थी वो टूट जावे। ये अभ्यास है सामायिक का, छोटा मोटा नहीं है। अकेले ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और माला फेर ली, हो गया सामायिक हो गई, इतना तो अपन करते हैं, ये तो कोई छोड़ने की बात नहीं, करने की है। लेकिन इससे आगे बढ़ना, तब ये स्थिति निर्मित होगी, ऐसी एकाग्रता अपनी चेतना के साथ में बन सकेगी। वो अपने पात्रों के साथ एकमेक हो जाते थे। एक दिन उन्होंने लिखा कि मैं सीढ़ियां उतर रहा था लाइब्रेरी की, और सीढ़ियां इतनी चौड़ी थी कि दो लोग आसानी से उतर सकते हैं। दोनों तरफ सीढ़ियों के दीवार नहीं थी, कोई रेलिंग भी नहीं थी, खुली सीढ़ियां थी। नीचे उतरते समय वे इतने अधिक एकाग्र थे अपने उस नाटक के पात्रों के साथ में कि उनसे बातचीत करते हुए मानो चले जा रहे हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं जिसको अपने नाटक का नायक बना रहा हूं वो मेरे साथ चल रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूं। और उतरते चले जा रहे हैं, अभी आधी सीढ़ियां ही उतरे थे कि उतने में नीचे से एक कोई व्यक्ति आता दिखा। तो उन्होंने सोचा कि अरे सीढ़ियां तो दो लोगों के ठीक ठीक गुजरने लायक हैं, हम तीन हो जाएंगे तो फिर जरा खिसकना चाहिए मुझे। तो उन्होंने खिसकना शुरू किया और बाजू में, वो जैसे जैसे ऊपर आता जाता ये और बाजू में खिसकते जाते कि तीन लोगों को निकलने के लिए जगह कैसे मिलेगी। और इस खिसकने की प्रक्रिया में वे सीढ़ियों से नीचे गिर गए। नीचे गिरे तो वो व्यक्ति बड़े अचरज में, उसने इनको जाके उठाला संभाला, क्या आप इतने बड़े दार्शनिक हैं और इतने बड़े राइटर हैं, और आखिर ये एक कैसे हुआ, हम तो नीचे से आ रहे थे, हमें पर्याप्त जगह थी निकलने की, आप बेकार में खिसकते चले गए। बोले वो तो आप समझ में आया मुझे, उस समय तो मुझे ये लग रहा था कि एक आप नीचे से आ रहे हैं और दो हम यहाँ नीचे से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो तीन को जगह कम पड़ेगी। ये तो गिरने के बाद मेरी एकाग्रता टूटी, तब याद आया कि मैं तो एक ही था, मैं तो इस भ्रम में था कि हम दो नीचे उतर रहे हैं। इतनी एकाग्रता सच सकती है क्या? है तो अपने अंदर एकाग्रता तो है, जिस काम में लग जाते हैं। दुकान में व्यक्ति सुबह से शाम तक लग जाता है तो भूल ही जाता है, भोजन तक भूल जाता है, टिफिन बना बनाया रखा रह जाता है कई बार लोगों का, इतना अधिक अपने व्यापार में मशगूल हो जाते हैं। इतनी एकाग्रता, फिर फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे संसार के बहुत सारे काम हैं, एकाग्रता किसी को सिखाई नहीं जाती है। बस एकाग्रता किस दिशा में करनी है ये भर सीखना आवश्यक। हम तो अशुभ विचारों में निरंतर एकाग्र हैं, चिंतन चलता ही रहता, एक अंतर मुहूर्त तक अगर किसी बात में आप एंगेज हैं तो मानिए वो ध्यान हो गया। एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट तक एक ही बात की प्लानिंग चल रही, किसी भी तरह की, शुभ हो या कि अशुभ हो, हमें सिर्फ ये करना है कि यह एकाग्रता एक अंतर मुहूर्त तक किसी शुभ विचार में हमारी हो जावे तो हमारा ध्यान व्यवस्थित हो जाएगा, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनेगा। और ऐसा करने से क्या होता है, हमारी चेतना परिष्कृत होने लगेगी। चेतना परिष्कृत होती इसके मायने क्या है आप सोच सकते हैं? जिसकी चेतना जितनी परिष्कृत होगी उतना ज्यादा उसका प्राणी मात्र के प्रति और सद्भाव होगा, ये उसका क्राइटेरिया है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, एक वाक्य लिखा हुआ है, यह मेरा है यह तेरा है, ऐसे भाव से कौन ऊपर उठता है जिसका चरित्र बहुत उदार और विशाल होता है, जिसकी चेतना बहुत परिष्कृत होती है, वही मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ करके प्राणी मात्र को उसके प्रति सद्भाव रख करके अपना मानता है। ऐसी अपनी चेतना का विकास तभी हो सकता है। पर देखते अपन ये है कि कितनी भी धार्मिक क्रियाएं अपन दोहरा लेते हैं, कितनी तो सामायिकें हमने करी होंगी, लेकिन हमारी चेतना परिष्कृत क्यों नहीं हुई? होना चाहिए थी। ये कसौटी है उसकी कि हमारे चेतना में इतना विशुद्धि आनी चाहिए थी कि फिर मेरे तेरे का भाव, ये तो नरक में होता है मारी थारी। हाँ, वास्तव में देखा जाए थोड़े संस्कार अपने उसके हैं, जब तक अपन मेरा तेरा करते रहते, ये मेरा ये तेरा, ये जब जब अपने मन में आ जाए तो विचार करना कि क्या कर रहे हैं हम, ये तो नारकी जीव करता है, मैं तो मनुष्य हूं, चेतनावान हूं, और चेतना में भी विशेष चेतनावान हूं मैं, ऐसा विचार आ जाना चाहिए तो मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ जाए। जितना मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठेंगे उतनी चेतना विशुद्ध होगी, और जितनी एकाग्रता अपने स्वरूप के प्रति होगी उतना मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। ये प्रक्रिया बिल्कुल जुड़ी हुई है उन सब से। तो हम एकाग्रता साधें अपने चेतना के स्वभाव से, तो हमारी चेतना विशुद्ध होगी, और उस विशुद्धि से हमें मेरे तेरे का भाव धीरे धीरे करके समाप्त होगा। राम तीर्थ विदेश पहुंच गए, फ्लाइट से एरोड्रम पर उतरे नीचे, तो एक नजर उन्होंने दौड़ाई, जैसे कि अपन कभी किसी नई जगह पे उतरते हैं ट्रेन से या कि बस से या कोई एरोप्लेन से भी उतरता है, तो एक बार देखता है कि कोई कोई है मेरा परिचित यहाँ स्टेशन पर, या मुझे कोई लेने आया है क्या, ऐसा एक सहज भाव अपने भीतर आता है। कोई परिचित मिल जाता तो पूछ लेते कहाँ कैसे जाना है, मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, नहीं तो फिर जैसा बनता है अपन करते। तो उनका भी शायद यही था कि देखिए यहाँ पर कोई है क्या। उनको ऐसा देख करके एक बाजू में खड़े हुए विदेशी व्यक्ति ने कहा कि क्या यहाँ पर इस देश में आपका कोई मित्र नहीं है क्या, आप ऐसे बहुत देर से देख रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, कोई आने वाला है क्या। तो इन्होंने मुस्कुरा करके उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि आप ही तो मेरे मित्र हैं, आप ही का तो इंतजार कर रहा था। क्या ऐसी है हमारी चेतना कि हम किसी को इस तरह कह सकें? ऐसा नहीं, हम तो चाहे जिसको ऐसा कह सकते हैं लेकिन उतनी ही निर्मलता के साथ, उतनी ही चेतना की विशुद्धि के साथ ऐसा कह सकते हैं क्या? ये हमारे मन में आना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में ऐसा भाव आने लगे सहज रूप से। विनोबा के माँ के ऊपर एक जिम्मेदारी आई कि उनके पिता एक अनाथ बालक को ले आए, ये पढ़ेगा लिखेगा तो स्कूल में रहेगा भी, इसकी व्यवस्था कर दी है, भोजन तुम करवा दिया करे इसको। तो उसकी माँ रोज जो है, उनकी माँ विनोबा की उस अनाथ लड़के को भोजन के समय पर आने पर प्रेम से भोजन कराती थी, गरम गरम भोजन कराती थी। एक दिन विनोबा ने टोक दिया माँ को कि माँ मैं तो तुम्हारा सगा बेटा हूं, तुम तो ये कहती हो कि सब में समान भाव रखना चाहिए, सब में भगवान है, फिर आपके व्यवहार में तो ये अंतर दिखाई पड़ता है, आप मुझे ठंडी भी परोस देती हैं कभी कभी भोजन सामग्री, और इसको तो आप गरम गरम ही खिलाती हमेशा, बढ़िया बढ़िया चीज। तो विनोबा की माँ ने क्या जवाब दिया कि बेटे मैं कहती हूँ, वो ठीक कहती हूँ तुमसे, कि सबके भीतर एक जैसा ही भगवान है, लेकिन अभी इस अतिथि के भीतर मुझे भगवान दिखाई देता है, तेरे भीतर तो मुझे अपनी अभी अपना मेरा बेटा दिखाई पड़ता, जिस दिन मैं तेरे भीतर भी वो देखूंगी तो तुझे भी गरम गरम खिलाऊंगी, अभी तो बेटा दिखाई पड़ता है। ये अपने साथ भी है, इतनी अधिक हमारी अपने पराये की प्रवृत्ति हो गई है कि हमें सहज रूप से नहीं दिखाई पड़ता हमें सब में कि यह भी मेरा ही अपना है, नहीं ये तो कोई और है, ये मेरा अपना है। दिन भर हम करते क्या है अगर विचार करें तो, गौर से विचार करें, मैं भी अभी उससे ऊपर नहीं उठ पाया हूं, ऐसा मत समझना कि मैं ऊपर उठ गया हूं। हम सब सबके भीतर, क्योंकि इतना गहरा संस्कार, इस संस्कार को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम एरिया बढ़ा सकते हैं, हमारे पराये का एरिया घटता चला जाए और प्राणी मात्र के कल्याण के प्रति हमारे मन में सद्भाव आता चला जाए, बढ़ता चला जाए ये, तो भी हमारे जीवन में चेतना का परिष्कार हो सकता है। क्योंकि जैसी चेतना मेरे भीतर है
वैसी ही सबके भीतर है, तब फिर सबको कल्याण करना चाहिए। सबके कल्याण में मैं निमित्त बनूं, सबके प्रति सद्भाव ही रखूं, ऐसा चेतना का परिष्कार हम चाहें तो कर सकते, और व्यवहार में हमारे बहुत सहजता आ सकती है। सहज व्यवहार के मायने भी यही है और ज्यादा कुछ नहीं है। व्यवहार की सहजता के मायने यही है कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, सहज व्यवहार करता हूं, किसी के साथ भी मैं और बुरा व्यवहार नहीं करता। ऐसा अपन देखें दिन भर में क्या एक आध दिन ऐसा कर पाते हैं? नियम तो लेते हैं अपन, और दूसरे प्रकार का ये नियम भी देना चाहिए कि आज मैं सबके प्रति सद्भाव रखूंगा, किसी के प्रति अपना मन खट्टा नहीं करूंगा, कड़वा नहीं करूंगा, आज सबसे बहुत अच्छे से बोलूंगा, और अगर नहीं बोल पाऊंगा अच्छे से तो नहीं बोलूंगा, चुप ही रह जाऊंगा। हमारे एक उनको इंप्रेशन बहुत पुराना है 1968 में, और एक शुल्लक दयासागर जी आए थे, उन्होंने एक बहुत बहुत शांत उनका स्वभाव था, वो जैन नहीं थे, पर उन्होंने अपना कैलकुलेशन कर लिया था कि मेरी आयु बहुत थोड़ी रहेगी, मुझे अपना कल्याण करना चाहिए, और उन्होंने मुझे मुनि महाराज का नाम याद नहीं किनसे दीक्षा ली थी, छुल्लक दीक्षा ले ली थी, और एमए इंग्लिश में किया था उन्होंने, और सर्विस छोड़ के आ गए थे वो बैंक की, और फिर थोड़ी समय रहे वो छुल्लक 1971 में तो उनका और समाधि हो गई। वो मैंने उनका देखा एक भजन, मुट्ठी को बांधे आया था मैं हाथ पसारे जाऊंगा, वो छपा, और फिर वो सबको दिया करते थे जो भी उनसे मांगता था। तो मैंने मांगा उनसे, बहुत मैं छोटा था उस समय, 10-12 साल का हूँ, तो मैंने कहा कि आप इस पर अपना नाम लिख के दें, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या लिखा था उन्होंने, सत्य के लिए हाँ, असत्य के लिए ना, प्रेम से बोलने के लिए हाँ, घृणा से बोलने के लिए ना, और अपना नीचे नाम। वो मुझे आज भी याद है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते एक दिन में? हमारे व्यवहार में इतनी सहजता नहीं आ पाती, आ सकती है हम अगर अभ्यास करें तो। ये सामायिक का अभ्यास हमें सहज प्रवृत्ति करने में मदद करेगा, वरना हम अकेले सामायिक की प्रक्रिया में ही कुछ दोहरा लें उतनी से काम नहीं चलेगा। हमारी प्रवृत्ति में उतनी ही समता और उतनी ही सहजता आ जावे, ये उसका प्रतिफलन हमारे जीवन में दिखना चाहिए। ठीक है, अभ्यास करेंगे, जितना आ पाएगा उतना करेंगे, पूरी तरह से आ जाए तो भगवान ही नहीं हो जाएंगे फिर, अभी एकदम थोड़ी होएंगे, अभी धीरे धीरे करके जितना जिसके जीवन में आ जाए उतना अभ्यास आसानी से किया जा सकता है। सहजता का एक दिन, एक घंटे, आज मैं सबके प्रति सद्भाव रखूंगा, एक घंटे किसी से भी कड़े वचन नहीं बोलूंगा, असभ्य वचन नहीं बोलूंगा, मैं कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करूंगा जिससे कि दूसरे के प्रति दुर्भावना व्यक्त होती हो, ऐसे मन वाणी और शरीर सब में मेरे घंटे भर सद्भावना ही बहे, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है अभ्यास से, तो ये सहज प्रवृत्ति कहलाती। छोटे बड़े का भेदभाव खत्म हो जाएगा, अपने पराये का खत्म हो जाएगा, शत्रु मित्र का खत्म हो जाएगा, सारे भेदभाव, नौकर और मालिक का भेद। फिर हो सकता है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं मालिक बनकर के, उसी पर आपका मन अपने नौकर को बिठाने का हो जाए, पर जरा संभल के बिठा ला, नहीं तो वो सिर पे बैठ जाए। दोनों चीज नहीं तो आपको मैं ऐसी चीज बता दूं और आप कहोगी और उपद्रव करवा दिया आपने। आज के समय में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो जिसको हम जरा ऊंचा उठाएंगे वो और हमारे चरणों में झुकेगा, ऐसे व्यक्ति को ऊंचा उठाना, हाँ ये सावधानी रखना, नहीं तो हम जिस चाहे को और ऊंचा उठाएंगे वो ऊंचा तो उठेगा नहीं बल्कि सिर पे बैठ करके ऊंचा उठेगा। जैसे कि माँ अपने बेटे के कहने पर भी उसे अपने सिर पे बिठा लेती है, तो सिर पे बैठने पर भी बेटा ऊंचा नहीं होता, वो जानता है कि माँ मेरी बड़ी है, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसको ऊंचा उठाना। हाँ, समान भाव सबके प्रति रखने का मतलब ये नहीं है आप उसका अन्यथा अर्थ नहीं ले रहे, तो नौकर और मालिक के बीच भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि वे एक दूसरे का यूज नहीं कर रहे हैं, वे एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। मालिक नौकर के सहयोग को के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे और नौकर भी मालिक के प्रति कृतज्ञ रहे, एक ऐसा रिश्ता हमारे सारे संबंधों में चाहे हम तो बन सकता है। फिर शत्रु मित्र का रिश्ता कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता, फिर तो सब परस्पर सिर्फ सहयोग का ही रिश्ता बनेगा। और अगर ऐसा रिश्ता हमारा सबके प्रति हो जाए, प्राणी मात्र के प्रति, फिर देखिएगा फिर हमारी चेतना कितनी परिष्कृत होती है और कितना सहज व्यवहार हमारा होता है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में अवलोकन करना चाहिए अपने ही जीवन का, कि ये कितना आया कितना नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे, लेकिन कभी नहीं आ पाएगा ऐसा नहीं, आ सकता है। ये हम अभ्यास के द्वारा
सुबह दोपहर शाम बैठ करके इसी के लिए हमने ये प्रक्रिया शुरू की। एक छोटी सी घटना, लिंकन के जीवन के राष्ट्रपति रहे वो, कहां के थे सबको मालूम है, मतलब ठीक है, कंफर्म कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। गलती भी हो सकता, मैं और कहीं का बोल देता तो फिर बाद में सुधारते। वो रास्ते से चले जा रहे थे और उनके अंगरक्षक और भी लोग जाते ही हैं बड़े व्यक्ति के साथ में, किसी के साथ में बहुत बड़े बहुत सारे लोग हो जाने से कोई बड़ा हो जाता है ऐसा नहीं, कोई हमने से सामान्य सा व्यक्ति चला रहा है, नागरिक होगा वो। उसने राष्ट्रपति को देख करके उन्हें जो भी प्रणाम की प्रक्रिया थी कि हेड उतार करके माथा झुकाएंगे वो प्रक्रिया की, तो जैसे ही उसने प्रणाम किया तो राष्ट्रपति लिंकन ने भी अपना हेड उतारा और उसको प्रणाम किया। अरे बाकी लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे। अब राष्ट्रपति को भी समझाने लगे वो जो अभी साथ में थे, होता है इस तरह बहुत देखने में आता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप राष्ट्रपति हैं, हम आपके साथ इसीलिए हैं और आप हमारी तरफ तो जरा ध्यान रखो, आप ही ऐसा करोगे तो हमें कौन पूछेगा, ऐसा आ गया उनके मन में। अब राष्ट्रपति का जवाब देखिएगा, उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा यह याद है कि मैं मनुष्य हूं, मैं राष्ट्रपति बाद में हूं, मैं मनुष्य हूं और एक मनुष्य होने के नाते मेरे भीतर विनय और कृतज्ञता ये तो होनी